अध्याय दो। परमेश्वर अब भी एक परिवार की इच्छा रखते थे। पिछले अध्याय में मैंने बताया कि परमेश्वर ने लोगों को इस पृथ्वी पर अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए सुसज्जित किया था। परमेश्वर ने यह कार्य अपनी विशेषताएं, उनके गुण और योग्यताओं को लोगों को देकर किया था। यह बात इतनी अद्भुत लगती थी और अद्भुत है, मगर वहीं से कुछ बातें दिलचस्प और डराने वाली बनी। परमेश्वर के विशिष्ट गुणों में से एक गुण तो स्वतंत्रता है, जिसे हम कई बार स्वतंत्र इच्छा भी कहते हैं। अगर आपने कभी भी ऐसा विचार किया हो कि क्यों इस जगत में दुष्टता है, तो बाइबिल इसका उत्तर इस प्रकार देता है। विद्रोह एक। जब परमेश्वर ने उनके बच्चों के साथ अपने गुण बांटने का निर्णय किया, तब वो उसका परिणाम जानते थे। परमेश्वर सब जानते हैं, इसलिए क्या होगा उसके बारे में वो स्पष्ट रीति से जानते थे। परमेश्वर ने पहले जो स्वर्गीय परिवार बनाया था, तब भी उनका यही निर्णय था। उनको भी बुद्धि और स्वतंत्रता दी गई थी। उनको भी उनके सृजनहार की ओर से वो वरदान मिले थे। परमेश्वर जानते थे कि जल्द ही या थोड़े समय के बाद उस वरदानों का दुरुपयोग होगा या तो उसे बिगाड़े जाएंगे। परमेश्वर अच्छी रीति से जानते थे कि आत्मिक जगत में या पृथ्वी पर उनके बच्चे उनके जैसे हैं, मगर वो ईश्वर नहीं। वे ईश्वर से नीचे ही हैं। वो अपूर्ण थे, मगर परमेश्वर संपूर्ण है। परमेश्वर जानते थे कि कब उनके बच्चे भूल करेंगे या तो सोचे बगैर कोई कार्य करेंगे, और परमेश्वर उनसे जो कार्य करवाने की इच्छा रखते थे उसके विरुद्ध विद्रोह करेंगे। अदन वाटिका में यही हुआ था। आदम और हव्वा ने विद्रोह किया था। उन्होंने भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष था, उसके फल को न खाने की आज्ञा को तोड़ा था। उन्होंने पाप किया और परमेश्वर की उपस्थिति में जो अनंत जीवन था, उसे खो दिया था। उसके बाद अदन वाटिका के बाहर जो भी मनुष्यों का जन्म हुआ, वो सब परमेश्वर से दूर थे। प्रेरित पौलुस उसके विषय में बात करते हुए कहता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। इसके पहले जो विद्रोह हुआ था, उसकी वजह से यह दुखद घटना हुई थी। परमेश्वर के अलौकिक परिवार में से किसी ने हव्वा की परीक्षा करके मानवीय परिवार होने का परमेश्वर का जो निर्णय था, उसका अपमान किया था, और परमेश्वर आदम और हव्वा का विनाश करेंगे ऐसी आशा रखी थी। वो सर्प के रूप में हव्वा के पास आया था। उत्पत्ति 3:1-7। बाइबिल उस सर्प को इबलिस और शैतान कहता है। प्रकाशित वाक्य 12:9। वो हव्वा को पाप करवाने में सफल तो हुआ था, पर मनुष्यों का हमेशा के लिए विनाश करने में असफल हुआ था। यहां कुछ गहरे सत्य है। उन सत्यों में से एक सत्य तो यह है कि हर एक व्यक्ति उसके जीवन में एक बार जो प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न और उसका उत्तर तो यह है कि क्यों इस जगत में बुराई है। इस जगत में बुराई का अस्तित्व है क्योंकि परमेश्वर ने अपने जैसे व्यक्तियों का सर्जन करने का निर्णय किया था। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर का एक बुरा पहलू भी है, मगर मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को रोबोट जैसा या पहले से प्रोग्राम किए गए कंप्यूटर के जैसे बनाने के विचार का इनकार किया था। उसका आखिरी बिंदु महत्व का है। परमेश्वर की समानता में होना प्रमाणभूत और आधिकारिक होना चाहिए। अगर हमारे पास खुद निर्णय करने की क्षमता न हो, तो हम परमेश्वर जैसे नहीं हो सकते। परमेश्वर रोबोट नहीं है और हमें परमेश्वर जैसा बनाया गया था। वास्तविक स्वतंत्र इच्छा के बगैर हम प्रमाणभूत या आधिकारिक रीत से परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते और उनको अधीन नहीं हो सकते। अगर हमारे निर्णय पहले से प्रोग्राम किए हों, तो उसे सही निर्णय नहीं कहा जा सकता। प्यार करना और अधीन होना उसके विषय के आधिकारिक और प्रमाणभूत निर्णय लेने के लिए संभव हो ऐसे सभी विकल्पों के विरुद्ध निर्णय लेना ही पड़ेगा। इस पूरी बात का परिणाम यह है कि बुराई का अस्तित्व है, क्योंकि लोग परमेश्वर के दिए गए स्वतंत्र इच्छा के वरदानों का दुरुपयोग करते हैं और आत्मसंतोष के लिए, बदला लेने के लिए या तो खुद के राज्य की स्थापना करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। इस दुरुपयोग की शुरुआत अदन के वाटिका से हुई थी। मगर परमेश्वर को इससे आश्चर्य नहीं हुआ था। उन्होंने तो उसकी अपेक्षा रखी थी। क्या होगा वो परमेश्वर पहले से जानते थे और उसके अनुसार योजना भी बनाई थी। परमेश्वर ने अपने विरुद्ध विद्रोह करने के लिए अपने मानवीय बच्चों का विनाश नहीं किया था, मगर उनको माफ करने वाले थे और छुड़ाने वाले थे। बाइबिल उस बात को स्पष्ट करता है, क्या होगा वो परमेश्वर ने पहले से देखा था और अपने विरुद्ध विद्रोह हो उससे पहले स्पष्ट रीति से कहें तो जगत की उत्पत्ति से पहले क्षमा और उद्धार की योजना बनाई थी। इफिसियों 1:4, इब्रानियों 9:26 से लेकर 10वें अध्याय का 7वां पद, पहला पत्रस 1:20। उद्धार की योजना को पूरी करने के लिए परमेश्वर को मनुष्य बनना था। हम हमारी बात के उस विभाग में जल्द ही जाएंगे, मगर वो घटना बने उसके बहुत समय पहले अदन वाटिका में जो हुआ था उसकी एक कीमत चुकानी थी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपनी उपस्थिति में से निकाल दिया था। उससे उसकी संतानें भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं थी। अब अदन वाटिका नहीं थी, मगर उसके बजाय परमेश्वर पिता के साथ अनंत जीवन के बदले मनुष्यों को अब मृत्यु की राह देखनी थी। रोमियों 5:12, यह तो जीवन के स्रोत से यानी कि परमेश्वर से अलग होने की कीमत थी। पाप की असर की वजह से परमेश्वर ने उनके बच्चों को अपने घर में से निकाल दिया था। मगर सर्प ने मनुष्यों के नाश के विषय में जो अपेक्षा रखी थी उससे तो यह परिणाम अच्छा ही था। परमेश्वर ने मानवीय परिवार होने की अपनी इच्छा को छोड़ नहीं दिया था, मगर विद्रोह की एक कीमत चुकानी पड़ी। परमेश्वर ने शैतान को भी दंड दिया था। परमेश्वर के जगत में मृत्यु को लाने की वजह से शैतान मरे हुए लोगों के राज्य का प्रभु बन गया, जिसे बाद में नर्क से पहचाना गया। दूसरी कोई योजना या विकल्प नहीं। इस समय शायद आपको ऐसा विचार आए कि क्यों परमेश्वर ने मानवीय परिवार होने की पूरी योजना को छोड़ नहीं दिया। स्वतंत्र इच्छा से पाप किया जाएगा और सैकड़ों वर्षों तक मनुष्य हिंसा, इनकार, स्वार्थ और दूसरी कई बुराइयां करने के द्वारा एक दूसरे को परेशान करेंगे। यह जानते होने के बावजूद भी परमेश्वर ने खुद स्वतंत्र इच्छा की अनुमति दी थी, शायद आपके दुख की वजह से, या तो आपके आसपास आप जो घटनाएं होती देख रहे हैं उसकी वजह से आपको ऐसी इच्छा हो कि परमेश्वर ने सबका नाश कर दिया होता तो अच्छा होता। आप माने या न माने, मगर परमेश्वर इस भावना को समझते हैं। आप जिस बुराई को देखते हो उसे परमेश्वर भी देखते हैं। परमेश्वर ने ऐसी अपेक्षा नहीं रखी थी, मगर आप ऐसा कहेंगे कि वे तो परमेश्वर है, तो क्या इन सारी बातों पर अधिकार नहीं रख सकते? यह इतना सरल नहीं है। इसके विषय में सोचें। जो बुरा करते हैं उनका नाश करके परमेश्वर बुराई को दूर कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर परमेश्वर बुरे लोगों का नाश करें तो बुराई का नाश कर सकते हैं। सब लोग पाप करते हैं, रोमियों 3:10-12, और बाइबिल बताता है कि सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं, रोमियों 3:23। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर बुराई का नाश तो कर सकते हैं पर ऐसा नहीं करते। परमेश्वर मनुष्यों से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने इस विकल्प का चुनाव नहीं किया। यह सब बातें एक अद्भुत सत्य बताती है। हमें अपने जैसा बनाने के द्वारा क्या होगा यह जानते होने के बावजूद भी परमेश्वर ने अपना मानवीय परिवार न होने के विकल्प के चुनाव को अग्रिमता नहीं दी। हमारे जगत में जो पाप और दुख हैं उसको और उसके कारण को परमेश्वर जानते हैं। उससे परमेश्वर दुखी होते हैं। परमेश्वर अपने मानवीय संतानों के लिए प्रेम से इस हद तक भरे हुए हैं कि उन्होंने अपने मूल उद्देश्य को नहीं बदला, दूसरे कोई विकल्प का नहीं पर सिर्फ एक ही योजना का चुनाव किया। अदन वाटिका में जो विद्रोह हुआ उसके बाद जो निष्फलताएं और पाप होंगे, जिसमें हमारे पाप का भी समावेश होता है, यह पहले से जानते होने के बावजूद परमेश्वर ने मानवीय परिवार की इच्छा रखी। अदन वाटिका में जो हुआ वो तो बात की शुरुआत का एक भाग ही है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उनके घर में से निकाल दिया, उत्पत्ति 3:22-24। परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया, उत्पत्ति 3:14-15, और अपनी उपस्थिति में से निकाल दिया, यशाया 14:12-15, यहेजकेल 28:16। संदेश इतना प्रबल और सरल था कि विद्रोह का दंड होना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि सबको संदेश मिल गया है, पर ऐसा नहीं है। परिस्थिति और भी बिगड़ गई। विद्रोह 2। आपने शायद ऐसा सुना होगा कि बाइबल सिखाता है कि मनुष्य ने अदन वाटिका में पाप किया, उसकी वजह से इस जगत में बुराई और दुष्टता है। मगर यह एक अर्ध सत्य है। अदन वाटिका में जो दुखद घटना हुई, उसके बाद ऐसी दो घटनाएं हुई जिससे मानव जाति और भी अनैतिकता और गड़बड़ी या तो अव्यवस्था में फंस गई। उसमें से प्रथम घटना का वर्णन उत्पत्ति 6:1-4 में मिलता है, जिसके विषय में दावे के साथ कह सकते हैं कि यह पूरे बाइबल की विचित्र घटनाओं में से एक है। मुझ पर भरोसा करो, मैंने इस घटना के विषय में पुस्तकें लिखी है। यह बात तो परमेश्वर के कुछ अलौकिक संतानों ने, यानी कि परमेश्वर के पुत्रों ने, अपने स्वरूप में मानवीय संतानों को पैदा करने की परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण किया था, उसके विषय में है। इस हेतु को पूरा करने के लिए उन्होंने मानवीय स्त्रियों का, यानी मनुष्यों की पुत्रियों का उपयोग करने का निर्णय किया था। इससे वो परमेश्वर के, यानी कि अपने खुद के स्वर्गीय पिता के प्रतिस्पर्धी बन गए। मनुष्य अपने परिवार के सदस्य बने, ऐसी परमेश्वर की इच्छा से खुश होने के बदले वे तो अपने साथी मनुष्यों के प्रभु बनना चाहते थे। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर एक परिवार की इच्छा रखते थे, गुलामों की नहीं। जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया, 2 पत्रस 2:4, उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की सीमा रेखा के विरुद्ध अपराध किया। उन्होंने अपनी मर्यादा से उल्लंघन किया और अपना निजी निवास स्थान छोड़ दिया, यहूदा 6। उसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उनको नर्क में डाल दिया, 2 पत्रस 2:4-5, यहूदा 6। मगर जो कार्य उन्होंने किया उसके परिणाम गंभीर थे। इस विद्रोह के विषय में बाइबिल के इन दो पद को देखो। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य का दुराचार बढ़ गया है और उसके मन के सारे विचार निरंतर बुराई के लिए ही होते हैं। इस बात से प्रभु को दुख हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया, उत्पत्ति 6:5-6। इन पद के बारे में विचार करो। हर एक व्यक्ति के मन के सारे विचार निरंतर बुराई के लिए ही थे। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसका उनको दुख हुआ और परमेश्वर दुखी हुए। यह तो बुराई और उसके बाद जो दुख आया उसकी व्याख्या है। जो प्रथम अलौकिक विद्रोह किया गया, उसने मानव जाति का परमेश्वर के साथ जो अनंत जीवन था उसे खोने के मार्ग पर अगुवाई की। इस विद्रोह की वजह से पाप की असर दूसरे स्तर तक फैली और मनुष्य अपने विनाश के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ा। जिस रीति से यह सब बातें हुई थी उससे परमेश्वर को दुख हुआ था। मानव जाति को स्थायी रूप से नुकसान हुआ था। बाइबिल हमें कहता है कि परमेश्वर मानव जाति के विनाश के लिए जल प्रलय को भेजने के अलावा दूसरा कोई उपाय देख सके नहीं, उत्पत्ति 6:17। इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि जल प्रलय की बात कभी भी ऐसा नहीं कहती कि परमेश्वर क्रोधित थे। यह बात तो हमें बताती है कि जो हो रहा था उससे परमेश्वर दुखी थे। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता देने का निर्णय किया था। अगर वो स्वतंत्रता ले ली जाए तो इसका अर्थ यह है कि मनुष्य परमेश्वर जैसा नहीं रहेगा, वो मनुष्य रहेगा ही नहीं। परमेश्वर के विद्रोह करने वाले पुत्रों ने जो किया उसका अंत लाना और फिर से शुरुआत की जाए, यही एक चुनाव था। परमेश्वर की दृष्टि में सिर्फ एक ही इंसान न्यायी था और वो तो नूह था, उत्पत्ति 6:9। वहां एक न्याय पुरुष तो था। परमेश्वर ने उसको लिया और अपना एक मानवीय परिवार होने की अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए उसका उपयोग किया। नूह और उसका परिवार और सब प्राणी बच जाए, इसलिए परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने को कहा। परमेश्वर को अभी भी ऐसी आशा थी कि मनुष्य की दुष्टता चाहे कितनी भी क्यों ना हो, पर अपनी मानवीय संतान उनके साथ रह सकते हैं। जल प्रलय के लिए तैयारी करने के लिए और लोगों को उनकी दुष्टता की माफी प्राप्त करने की बात करने के लिए दूसरा पत्रस 2:5। परमेश्वर ने दया करके नूह को 120 वर्ष का समय दिया था। उत्पत्ति 6:3। अंत में लोगों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह में मिली हुई चेतावनी का इनकार किया। फिर से एक बार परमेश्वर के बच्चों ने उनकी स्वतंत्रता का उपयोग करके परमेश्वर की ओर अपनी पीठ दिखाई। परमेश्वर का हृदय बहुत टूट चुका होगा, क्या इस बात में कोई आश्चर्य है? मगर वहां नूह और उसका परिवार था। जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जो मूल आज्ञा दी थी कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, उत्पत्ति 9:1, वही आज्ञा नूह को दी। परमेश्वर उनके द्वारा नई शुरुआत कर रहे थे। परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी, जो पूरी मानव जात के साथ बांधी हुई वाचा थी, उत्पत्ति 9:8-17। वाचा तो वचन या प्रतिज्ञा है। ये वाचा एक पक्षीय थी। यह तो मानवीय परिवार का पानी से नाश न करने का परमेश्वर का वचन था, उत्पत्ति 9:11। यह एक अद्भुत बात है कि परमेश्वर अभी भी मानवीय परिवार की इच्छा रखते थे। आश्चर्यकारक तो नहीं, पर अद्भुत बात तो यह थी कि परमेश्वर की भलाई का दुरुपयोग अभी भी चालू ही रहा था। जल प्रलय के बाद तीसरा विद्रोह हुआ था। उससे बाइबल की बाकी की बात की शुरुआत होती है और वहां फिर से परमेश्वर की अजय धीरज और प्रेम देखने को मिलते हैं। विद्रोह 3, आदम और हव्वा की और नूह के समय के जल प्रलय की बात के जैसे आपने बाबेल के मीनार की बात भी सुनी होगी। अगर न सुनी हो तो भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि कलिसिया में जाने वाले अधिकांश लोग वहां वास्तव में क्या हुआ था यह नहीं जानते हैं। बाबेल के मीनार की बात उत्पत्ति 11:1-9 में देखने को मिलती है। जल प्रलय होने के बाद परमेश्वर नूह के संतानों की वृद्धि करके उनको पूरी पृथ्वी में फैलाना चाहते थे। आदम और हव्वा के जैसे वे भी परमेश्वर की सृष्टि की देखभाल करने के लिए परमेश्वर के साथ ही कार्य करते, पर ऐसा करने के बदले वे लोग तो बाबेल नामक एक स्थल पर खुद का नाम करने और मीनार बांधने के लिए इकट्ठा हुए थे, उत्पत्ति 11:1-4। ये तो कहानी का परिचित भाग है, मगर बाइबिल की एक दूसरी पुस्तक में बताए गए दो अपरिचित पद में उसका वास्तविक अर्थ है। ये पद इस प्रकार है, जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इसराइलियों की गिनती के अनुसार ठहराई, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नापा हुआ निज भाग है, व्यवस्था विवरण 32:8-9। यह दो पद हमें बताते हैं कि बाबेल के मीनार के आगे जो न्याय किया गया उसमें एक तो मनुष्य जाति के विभाग का न्याय था। बात के इस भाग तक परमेश्वर मानव जात के साथ एक सामूहिक व्यवहार कर रहे थे, पर बाबेल के समय पर यह व्यवहार बदल गया। मानव जाति अब भाषा और भौगोलिक परिस्थिति में विभाजित हो गई। इससे भी बुरी बात तो यह थी कि परमेश्वर ने खुद को मनुष्य जाति से अलग कर लिया। मनुष्य ने परमेश्वर की इच्छा की जो अवज्ञा की थी, उससे उपकर परमेश्वर ने पृथ्वी के सारे देशों को अपने अलौकिक परिवार के दूसरे सदस्य यानी कि परमेश्वर के पुत्रों को सौंप दिया। यह समूह तो जल प्रलय के समय पर जिस समूह ने अपराध किया था उससे अलग था। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपने घर से बाहर नहीं निकाला। परमेश्वर ने अदन वाटिका में यह काम किया था, मगर जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने मनुष्य जाति का विनाश न करने का वचन दिया था, उत्पत्ति 9:11। इससे विपत्ति का पुनरावर्तन नहीं करना था। तो अब परमेश्वर क्या करेंगे? मानो परमेश्वर के लिए ऐसा कहना जरूरी था कि बस अब बहुत हुआ, अगर तुम मुझे अपने परमेश्वर के तौर पर चाहते नहीं हो तो मैं तुम्हें मेरे स्वर्गीय सहायकों को सौंप दूंगा। न्याय के बहुत प्रकार थे। उसमें कितना समय लगा था उसके विषय में हमें कुछ नहीं कहा गया है, पर बाइबल हमें कहता है कि परमेश्वर ने अपने जिन जिन अलौकिक पुत्रों को देशों के ऊपर ठहराया था उन्होंने एक असंतोषकारक या हल्का काम किया था। वे इतने भ्रष्ट हुए थे, भजन संहिता 82:1-5 कि परमेश्वर को उनका भी न्याय करना पड़ा। एक दिन परमेश्वर उनकी अविनाशिता और उनको सौंपे हुए देश ले लेंगे। भजन संहिता 82:6-8। हमें ऐसा लगता होगा कि परमेश्वर निराशा की वजह से चिढ़कर अपने मानवीय परिवार को खो बैठे। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हिम्मत खो दी, पर वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर का निरंतर प्रेम। क्या आपने कभी भी बाबेल के मीनार की विपत्ति के बाद जो हुआ उसकी कल्पना की है? परमेश्वर अब्राहम के आगे प्रकट, तब वो अब्राहम नाम से पहचाना जाता था, हुए थे। वो एक वृद्ध व्यक्ति था और उसकी पत्नी का नाम सारा था और उसकी बच्चे जनने की उम्र बीत चुकी थी। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। परमेश्वर ने इस वृद्ध पुरुष और उसकी पत्नी को वचन दिया कि उनको एक बेटा देंगे। परमेश्वर चमत्कार करने वाले थे। उनके पुत्र से इस पृथ्वी पर परमेश्वर एक नए परिवार की शुरुआत करने वाले थे। उत्पत्ति 12:1-9, 15:1-6, 18:1-15। मानव जात को अपने स्वर्गीय परिवार के सदस्यों को बांटकर परमेश्वर अब्राहम के द्वारा अपने परिवार की नई शुरुआत करना चाहते थे। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया था। उत्पत्ति 15:6। उसने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया था। फिर से शुरुआत करने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम का चुनाव किया था। परमेश्वर और अब्राहम के साथ जो संबंध था, उसकी शुरुआत परमेश्वर ने खुद की थी। अब्राहम ने सिर्फ विश्वास किया था। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को जो बुलाहट दी थी और अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया था, उससे जो वाचा के संबंध की शुरुआत हुई थी, उसको याद रखने के लिए सुन्नत का दृश्य और भौतिक चिन्ह दिया गया था। उत्पत्ति 17:1-14, 4:1-12। अब्राहम के पूरे परिवार ने इस नमूने का अनुसरण किया था। उत्पत्ति 17:23। अब्राहम के संतानों में से यह चिन्ह परमेश्वर जिस परिवार की इच्छा रखते थे उस परिवार के सदस्यों के लिए अंकित किया गया था। सुन्नत का चिन्ह तो अब्राहम की पीढ़ियों में जो स्त्रियां थी उनके लिए भी था, क्योंकि उनको सिर्फ वही कुल में शादी करनी थी। और यह तो उनको इस बात को याद दिलाता था कि जब अब्राहम और सारा ने अपनी खुद की संतान हो ऐसी इच्छा व्यक्त की थी, तब परमेश्वर ने अलौकिक रीति से उनको पुत्र का वरदान दिया था और उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाया था। इस बात को याद रखना महत्वपूर्ण है कि अब्राहम के साथ परमेश्वर की जो वाचा थी उसका आधार तो परमेश्वर के वचनों पर जो विश्वास था उस पर है। अब्राहम अच्छी रीति से परमेश्वर के नियमों का पालन करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसका चुनाव नहीं किया था। उद्धार का आधार हमारे वर्तन पर आधारित नहीं है। हम हमारा उद्धार कमा नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर हमारे कार्यपालन के सद्गुणों का कर्जदार होता। हमारे सिद्धियों के बदले में परमेश्वर हमारा कर्जदार होता। थोड़ा विचार तो करो कि यह कितना विचित्र होता। पर अब्राहम और उसकी संतानों ने वाचा के चिन्ह का अवलोकन करने के द्वारा परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया था। उनकी वफादारी को दर्शाने की यह एक बाह्य रीत थी। पौलुस प्रेरित ने वफादारी पूर्वक विश्वास करने के उदाहरण के रूप में अब्राहम का प्रयोग किया था। रोमियो 4:1-12। अब्राहम कोई भी नियम का पालन करे उससे पहले उसने विश्वास किया और उससे उसका स्वीकार किया गया। उसका नियमों का पालन करना इस बात को बताता है कि उसने विश्वास किया था। उसके विश्वास के बदले उसकी अधीनता को नहीं रखा जा सकता। विश्वास महत्वपूर्ण और जरूरी बात थी। परमेश्वर है, ऐसे विश्वास की वफादारी के विषय में हम आगे बात करेंगे। आज हम उसे शिष्यत्व या चेला बनाना कहते हैं। विश्वास और वफादारी दो अलग बातें हैं। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, पर उसकी अदला बदली नहीं कर सकते हैं। हमारे उद्धार और शिष्यत्व के विषय में यही बात सही है। अब्राहम को पुत्र का वचन देना और उसके द्वारा एक बड़ी देश जाति बने ऐसे एक नए परिवार की शुरुआत करनी, यह तो अदन वाटिका की विपत्ति के बाद परमेश्वर ने बांधी हुई दूसरी वाचा है। पहली वाचा नूह के साथ की गई थी, पर एक मानवीय परिवार होने के परमेश्वर के स्वप्न को सलामत रखने के लिए परमेश्वर ने ये दो वाचाएं बांधी थी। पर ये वाचाएं हमें बताती है कि परमेश्वर ने हिम्मत खो नहीं दी थी। ये वाचाएं तो लोगों तक अनंत जीवन को फैलाने के लिए दी गई थी। परमेश्वर ने मानव जाति को छोड़ नहीं दिया था। परमेश्वर लोगों से प्रेम करना बंद नहीं कर सके। परमेश्वर अभी भी खुद का एक मानवीय परिवार हो ऐसी इच्छा रखते थे। परमेश्वर ने अब्राहम को दी हुई वाचा को पूरा किया था। सच में उसके द्वारा सारा को एक पुत्र इसाक हुआ था। उत्पत्ति 17:19-21, 21:1-7। अब्राहम का विस्तृत परिवार इस्राएल नाम से जाना गया। पुराने नियम में बार बार ये नाम परमेश्वर के मानवीय परिवार के लिए उपयोग में लिया गया है। उत्पत्ति 32:28, व्यवस्था विवरण 32:9, यशाया 44:1। पर बाबेल के मीनार के सामने जो विद्रोह किया गया, तब परमेश्वर ने दूसरे देशों को परमेश्वर के पुत्रों को सौंप दिया था, उनका क्या? बाइबल में उनको अन्य जाति कहा गया है। उसका अर्थ यह है कि वे इसराइल के नहीं। बाबेल की मीनार के आगे जो हुआ उसके बाद भी परमेश्वर अपने लोगों को भूले नहीं थे। परमेश्वर फिर से एक बार नए लोग यानी कि इसराइल के लोगों के द्वारा फिर से शुरुआत करने वाले थे। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि एक दिन उसकी संतानें जिस दूसरे देशों को परमेश्वर ने छोड़ दिया था उनके लिए आशीष का कारण बनेगी। उत्पत्ति 12:3। बहुत सालों बाद अब्राहम के परिवार में जन्मा हुआ यीशु उन दूसरे देशों को परमेश्वर के पास लाने वाला एक खास संतान बना था। गलतियों 3:16-18, 26-29। यीशु के आने से पहले अन्य जाति लोग दूसरे सभी देवों का इनकार करके परमेश्वर पर विश्वास करके और परमेश्वर की वाचा का चिन्ह लेकर परमेश्वर के परिवार के साथ जुड़ सकते थे। अब्राहम और यीशु के बीच बड़ा लंबा समय बीत चुका था। इसराइली लोग जो यहोवा का अंश व्यवस्था विवरण 32:9 थे, उनका इतिहास भी कुछ अच्छा नहीं था। वे परमेश्वर के लोग थे, मगर निराशाजनक बात तो यह थी कि वे अपनी वफादारी में निष्फल हो चुके थे। अभी भी एक अंधकारमय समय आने वाला था।